ओम शांति। प्यारे बाबा ने संडे की मुरली में एक बहुत ही सुंदर बात कही। बाबा ने कहा कि बच्चों में यदि कोई भी कमी कमजोरी हो तो उसको खत्म करने में समय न लगाएं, बच्चे उसको तुरंत खत्म कर दे। तो जब बाबा ने ये बात कही तो मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आया। महाभारत में आता है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं जयद्रथ का वध आज सूर्य डूबने से पहले अवश्य करूंगा, और अगर नहीं कर सका तो फिर उसने ये भी प्रतिज्ञा की कि मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो जब उसने ये प्रतिज्ञा की, सच्चे दिल से प्रतिज्ञा की, तो भगवान ने उसकी मदद भी की। और वो प्रसंग हम सभी जानते हैं कि एक बार सूर्य बादलों के पीछे चला गया और फिर दोबारा निकला, और इस प्रकार भगवान की मदद से उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो हम सभी के अंदर कोई ना कोई छोटा मोटा जयद्रथ अवश्य छिपा हुआ है। अगर हम भी अर्जुन की तरह ये प्रतिज्ञा करते हैं कि उस जयद्रथ का, अर्थात अपनी उस कमी का आज अवश्य ही अंत कर देंगे, तो भगवान ऐसे बच्चों की मदद अवश्य करते हैं। हिम्मत का एक कदम बच्चा बढ़ाता है और हजार कदम से बाबा उसकी मदद करता है। किसी भी कमी कमजोरी को छोड़ने का, ऐसे तो आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन सबसे सरल तरीका है कि वो बात सच्चे दिल से बाबा को बता दी जाए। जैसे कई साइकोथेरेपिस्ट होते हैं और वो किसी की मानसिक बीमारी को ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि फिजिकल बीमारी को तो डॉक्टर अपने आप भी पहचान जाता है, उसके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन जो मन की बीमारियां होती हैं उनका तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, वो तो पेशेंट को आप ही बतानी पड़ती हैं। तो कई बार ऐसा होता है पेशेंट अपने आप को ओपन नहीं करता और असली बात को छिपाते छिपाते साल भर लगा देता है और वो ठीक भी नहीं होता, ट्रीटमेंट चलती रहती है। साल बाद उसे कोई प्रेरणा मिली और उसने अपने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर क्या कहता है, अगर यही बात तू मुझे पहले दिन बता देते ना तो मैं उसी दिन तुम्हारा इस तरह इलाज शुरू करता, तुम कब के ठीक हो गए होते, लेकिन तुमने बताया ही नहीं, साल लगा दिया, तो ठीक होने में भी इतना समय लग गया। तो ऐसे ही कई बार कोई ऐसी बात होती है जो हम बाबा को सुनाते ही नहीं है, ओपन ही नहीं करते हैं, खोलते ही नहीं है बाबा के सामने, और उसमें इतना समय लगा देते हैं और वो कमजोरी भी हमारी चलती रहती है। तो एक तरीका है कि हम बाबा को सुना दें, और एक और तरीका भी है जिसका आज बाबा ने वर्णन किया। स्लोगन में बाबा ने बताया कि अगर विश्व का नव निर्माण करना है तो निमित्त भाव और निर्माण भाव को धारण करो। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि निमित्त भाव सर्व गुणों की खान है। आपको एक एक गुण धारण करना मुश्किल लगेगा, एक एक गुण को धारण करना, उसका चिंतन करना, उसमें समय भी लगेगा। लेकिन बाबा ने कहा, अगर आप में निमित्त भाव आता है, आपको निमित्त भाव की अनुभूति है, तो सारे गुण ऑटोमेटिक निमित्त भाव के पीछे पीछे आ जाते हैं। जो व्यक्ति निमित्त भाव को धारण करके चलता है, उसमें नम्रता के साथ कर्तव्य परायणता, फिर जिम्मेवारी लेने की भावना, फिर सच्चाई, फिर एकता का भाव, ये सारे के सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और केवल ज्ञान में ही नहीं, लौकिक दुनिया में भी हम देखते ही हैं कि जो व्यक्ति जितना निमित्त भाव वाला होता है, तो किसी भी ट्रस्ट को या अपने परिवार को या किसी भी बड़े पद को निभाना उसके लिए बहुत सरल होता है। वैसे भी जो लोग ग्रुप बना करके कोई सेवा का कार्य करते हैं, उनको अपन ट्रस्टी कहते हैं। और ट्रस्टी का अर्थ होता है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। लेकिन सही मायने में ट्रस्टी का अर्थ क्या है, निमित्त का अर्थ क्या है? हम रोज के जीवन में बहुत सारी बातें अपने चारों ओर देखते हैं। ट्रस्टी व्यक्ति वो होता है जो करता तो सब कुछ है, लेकिन करते हुए भी उसको करने का भान भी नहीं आता, करने के बदले में कोई कामना भी पैदा नहीं होती, और करने के कारण कोई थकान या कोई भारीपन भी नहीं आता। जैसे हम कई बार देखते हैं, हम सबका अनुभव है, कोई बैंक का मैनेजर है और वो कितने सारे पैसे संभालता है, करोड़ों रुपए संभालता है, गिनेगा, संभालेगा, प्यार से रखेगा। अगर अपन उसको कहें कि भई ये पैसे आपके हैं, पूछें, तो बोलेगा नहीं, ये मेरे नहीं है। फिर आप उससे पूछिए कि जब आपके नहीं है तो आप संभालते क्यों हैं, तो कहेगा नहीं, मैं निमित्त हूं इनके संभालने का, संभालने तो मुझे हैं, मेरा अपना पैसा बेशक थोड़ा बहुत ऊपर हो नीचे हो जाए, लेकिन ये पैसे में एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ना तो पैसा उसका अपना है, लेकिन फिर भी वो संभालता है क्योंकि वो ट्रस्टी है, करोड़ों संभालता है, और उस संभाल के बदले में उसको सैलरी मिलती है, उस सैलरी में वो संतुष्ट है, लेकिन उस करोड़ों रुपए के बारे में उसके मन में कोई लालसा, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उनका वो केवल निमित्त है। इसी तरह से हॉस्पिटल में एक नर्स है, कितने सारे बच्चों को संभालती है, जितनी एक माँ सेवा करती है उससे कई गुना ज्यादा सेवा करती है। वो माँ तो केवल एक बच्चे की करेगी, वो तो बहुत बच्चों को एक साथ भी करेगी, सबका दवाई पानी नाम सब कुछ याद रखेगी, देखने वाला ऐसे समझेगा कि इस नर्स को इन बच्चों से कितना प्यार है, रात भी जागना पड़े तो जागेगी। लेकिन जैसे ही बच्चे का हॉस्पिटल में कार्य पूरा हुआ और उसके घर वाले ले जाने लगेंगे, तो बड़ी खुशी खुशी उसको विदाई देगी मुस्कुरा के। उसको जरा मन में ये ख्याल नहीं आता कि मैंने इसकी इतनी सेवा की और अभी ये मेरे से बिछुड़ रहा है। उसको दुआएं देगी, उसके हेल्थ की अच्छी कामना करेगी और उसको छुट्टी दे देगी। तो जो इतनी सेवा की वो कैसे की, वो डिटैच होकर के की, सेवा की जी लगा के की, लेकिन मेरापन नहीं आया। इसी तरह से कई बार आप दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं, आजकल दुकानों पे सेल्समैन रहते हैं, तो आप किसी सेल्समैन को कहेंगे, भाई मुझे एक शर्ट दिखाओ, तो वो शर्ट दिखाएगा, बहुत सारी दिखाएगा, 10, 20, 25, 30 ढेर लगा देगा। आप एक को हाथ लगाओगे वो 2 निकालेगा और बहुत प्यार से दिखाएगा। फिर मान लीजिए आपने एक शर्ट पसंद की और आप कहते हैं, भाई इसकी कीमत कितनी है? वो कहता है, इसकी कीमत तो 350 रुपये है। आप कहते हैं, नहीं 350 तो ज्यादा है, आप मुझे 300 में दे देंगे? तो वो क्या कहेगा, ये जो दुकान है ना, इसके पीछे ऑफिस है, वहां मालिक बैठा है, आप उससे बात कर लो। तो हम कहेंगे, भाई हमको तो आप ही मालिक नजर आ रहे थे, हमने एक शर्ट मांगी, आपने 10 निकाली, और आप मालिक की तरह ही काम कर रहे हो, हमको तो लगा आप ही मालिक हैं और आप ही मोल भाव भी करेंगे। बोलेगा, नहीं मैं तो केवल दिखाता हूं, लेन देन पैसा कम ज्यादा ये सब मेरे मालिक का काम है, उससे बात करूं। तो काम कर रहा है, लेकिन काम करते करते भी स्मृति किसकी है? मालिक की। मालिक जाने, मालिक की दुकान है, मालिक का काम है, मालिक का पैसा है, मालिक का मोल भाव है, घाटा नफा सब मालिक का है। मेरा काम है दिखाना देना, दिखाऊंगा प्यार से, उसमें उसको जरा आलस नहीं आता है, लेकिन मोल भाव नहीं करूंगा। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, आप जो भी सेवा करते हो, उस सेवा को करते हुए आपको भी अगर ये स्मृति है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मेरा मालिक ऊपर बैठा है, मेरा मालिक मेरे साथ साथ है, मैं मेरे मालिक के आदेश से ये सेवा कर रहा हूं, कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, छोटी सेवा, बड़ी सेवा, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, आखिर तो सारा कारोबार मालिक का ही है ना, और उस मालिक ने ही श्रीमत दी है, उसी की श्रीमत प्रमाण। अलग अलग प्रकार की सेवाएं बनी है, कोई एक सेवा है, कोई भोजन की सेवा है, कोई सफाई की सेवा है, लेकिन सब मालिक की श्रीमत प्रमाण है। तो जब हम सेवा करते हैं या दूसरे को सेवा करते देखते हैं, तो क्या याद आई, ये मालिक की सेवा में है, मैं भी मालिक की सेवा में हूं, मालिक ने हमको सेवाएं दी हैं, सेवा कैसी हुई उसका जिम्मेवार मालिक है, कितना किसको उजूरा देना है उसका जिम्मेवार भी मालिक है, मुझे तो केवल निमित्त बन करके सेवा करनी है। तो जब ऐसी भावना रहती है, तो चाहे अपन 20 घंटे भी सेवा करें, थकान नहीं होती है। और जब ये भावना होती है, तो चाहे कैसे भी व्यक्ति मिले, महिमा करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, सहयोग देने वाले या ना देने वाले, कैसे भी मिले, लेकिन हमको सब ऐसे लगेंगे जैसे सब अच्छे हैं, जैसे सब हमको कोऑपरेट ही कर रहे हैं, जैसे सब अपना अपना पार्ट ठीक प्ले कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आएगा नहीं। निमित्त भाव में आत्मा इतनी हल्की रहती है, सब कुछ करते हुए भी इतनी न्यारी रहती है, उसको लगता है कि मैं तो केवल चीज को छू ही रहा हूं, काम तो अपने आप हो रहा है। ये कितनी सुंदर अनुभूति है, जिसमें देह में रहते भी आत्मा देह में, देह के पदार्थों में, देह के संबंधों में, देह की ड्यूटीज में, देह की प्रवृत्ति में, पुरानी बातों में, भविष्य की चिंता में कहीं भी नहीं उलझती। बस उसको अपना मालिक बाबा दिखाई देता है, अपनी सेवा दिखाई देती है और अपने स्वरूप की स्मृति बनी रहती है, अपने गुण, अपनी कलाएं जो बाबा ने उसमें भरी है उनका चिंतन चलता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अगर निर्विघ्न बनना है, और जैसे बाबा ने कहा क्यों क्या, पिछली मुरली में कहा, ये सब के सब प्रश्न क्यों, प्रश्नों की क्यों लगाते हैं, तो अगर इस क्यू से बचना है तो बार बार हमको ये चेकिंग करनी है कि मैं निमित्त भाव से कर्म कर रहा हूं। निमित्त भाव से फिर सच्चाई भी आ जाती है। और जो बाबा ने नियम और मर्यादाएं बताई हैं, उनके ऊपर चलने की अपने आप शक्ति आ जाती है। और जब निमित्त भाव आता है तो भले कितना भी बड़ा संगठन हो, उसके बीच में रहते भी ऐसे लगता है जैसे मैं एकांत में हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी, किसी और बात के कारण भी कोई चीज पसंद नहीं है, अनुकूल नहीं है, ये डिस्टर्बेंसेस भी नहीं आती है। ऐसे लगता है जैसे निमित्त भाव में आत्मा इस संसार में होते हुए भी कहीं और है। और एक और फायदा है निमित्त भाव का, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए बीच बीच में बाबा को याद करो। तो जब हम निमित्त भाव में होते हैं तो कर्म में फंसते नहीं है, और कर्म में फंसते नहीं है तो 2 मिनट बाबा की याद में।
प्रेम से बस लो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
निमित्त भाव पे चिंतन कर रहे थे। जब हम कर्म निमित्त भाव से करते हैं तो उसका एक फायदा ये होता है कि बीच बीच में जैसे बाबा कहते हैं बच्चे ट्रैफिक कंट्रोल करो, या हर घंटे में 5 मिनट 10 मिनट फरिश्ता स्थिति या शरीर स्थिति में टिको, तो देखने में आता है कि ये स्थिति बहुत सहज भाव से बन जाती है, और जितनी देर बनाना चाहिए उतनी देर बन जाती है, और भूल भी नहीं होती है। नहीं तो निमित्त भाव नहीं होता है तो कर्म में इतने लिप्त हो जाते हैं कि जो अशरीरी बनने की श्रीमत है या फरिश्ता बनने की श्रीमत है, कई बार वो बुद्धि से निकल भी जाती है। इतिहास में निमित्त भाव के एक बहुत सुंदर उदाहरण पर अभी हम चर्चा करेंगे, और एक हमारे धार्मिक साहित्य में भी निमित्त भाव का बहुत सुंदर उदाहरण है। पहले हम इतिहास वाली बात को लेंगे। हम सभी ने शिवाजी का नाम सुना है। शिवाजी को लोग बहुत सम्मान देते हैं, और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि शिवाजी वास्तव में ही शिव का ही जैसे पुत्र था, क्योंकि इतना अच्छा राजा भारत के इतिहास में शायद ही कोई हुआ हो। तो शिवाजी की इस अच्छाई के पीछे क्या राज था? वास्तव में इसके पीछे भी उसका निमित्त भाव ही था, जिसके कारण वो विरोधी लोगों को भी उसके गुण बहुत अच्छे लगते थे, और उसकी अपनी प्रजा और उसका अपना सब कुछ तो उससे बहुत संतुष्ट था ही। तो इतिहास में आता है कि उनके जो गुरु थे उनका नाम था समर्थ रामदास। तो एक दिन जब शिवाजी अभी छोटे थे माना, तो एक दिन वो गुरु रामदास भिक्षा लेने के लिए आया। गुरुओं का तो काम ही है कमंडल हाथ में लेके भिक्षा मांगना, तो वो भिक्षा मांगते मांगते शिवाजी के घर भी आ गए। शिवाजी तो राजा का बेटा था, वहां भी आ गए, वो उनका ही गुरु था वो। तो शिवाजी अब समझदार हो गए थे, तो उनके मन में ख्याल आया कि ये इतना बड़ा गुरु और इतना ज्ञानी, और ये पेट भरने के लिए भिक्षा मांगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसने एक चिट्ठी के ऊपर लिखा कि आज से शिवाजी की चल अचल संपत्ति के मालिक समर्थ गुरु रामदास, और ऐसे लिख करके उसके कमंडल में वो चिट्ठी डाल दी। उन्होंने जब वो कमंडल देखा और उसमें वो चिटकी देखी तो वो समझ गए और उन्होंने शिवाजी को बुलाया कि आज से तुम्हारे राज्य का मालिक मैं हो गया, जैसा कि तुमने लिखा है, तुमने मुझे समर्पित किया, लेकिन अब तुम क्या करोगे। तो उसने कहा, गुरुजी मेरा क्या है, मैं तो कोई छोटी मोटी नौकरी कहीं भी कर लूंगा और अपना पेट भर लूंगा। तो गुरु ने कहा, अच्छा तो तुमको नौकरी चाहिए। बोला, हाँ कहीं भी नौकरी कर लूंगा। तो गुरु ने कहा, अब तो मैं राजा बन गया हूं तो तू मेरे यहाँ ही नौकरी कर ले। तो शिवाजी ने कहा, ठीक है, आपके यहाँ क्या नौकरी करनी है। तो गुरु ने कहा, देखो मैं तो ठहरा सन्यासी, मेरे को ये राजपाट संभालना तो आता नहीं है, तो तू मेरे यहाँ राज्य संभालने की नौकरी कर लो, राज्य मेरा और संभालो तुम, ये नौकरी है। तो शिवाजी ने कहा, ठीक है। तो पहले उनके किले के ऊपर कोई और झंडा था, लेकिन जब गुरु को राजपाट सौंप दिया तो भगवा झंडा हो गया और शिवाजी गद्दी पर बैठ गया, लेकिन इस भावना के साथ कि गद्दी गुरु की है, मैं केवल नौकरी कर रहा हूं, गद्दी पर बैठने की मेरी नौकरी है। तो जब गुरु सामने है हर बात में और जब गुरु की आज्ञा से ही सब कुछ हो रहा है, वो छोटा सा भी डिसीजन लेता है तो गुरु से पूछता है, तो उसका परिणाम ये हुआ कि अध्यात्म का और राजनैतिक शक्ति का दोनों का बहुत सुंदर समन्वय हुआ और इस कारण से शिवाजी ने बहुत ही ऊंचे मूल्यों के साथ, चरित्र के साथ अपने उस राज्य को संभाला। अब यही बात ज्ञान मार्ग में भी बाबा ने हम बच्चों को समझाई है। जब हम भक्त थे, 63 जन्म हमने भक्ति की, तो हमने भी बहुत चाहा और कहा मंदिरों में जा जा करके कि तन मन धन सब कुछ तेरा है, लेकिन वहां कोई भी सामने प्रकट ही नहीं हुआ जो हमारे तन मन धन को स्वीकार कर ले और बदले में हमें भी केवल खाना मिल जाए, जीवन निर्वाह हो जाए, ऐसी हमारी जिम्मेवारी ले ले। तो हम कहते भी रहे और फंसते भी रहे, जितना अधिक कहा उतना ज्यादा फंस गए। और अब जब संगम युग आया तो शिव बाबा ने कहा, जो आपका है वो सब कुछ मेरा है, मुझे दे दो। तो हमने बाबा को कहा, ठीक है बाबा, ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, सब कुछ आपका है, आप ले लो, आपका ही दिया हुआ है, आप ले लोगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। अब बाबा ने स्वीकार कर लिया, ज्योति बिंदु रूप में बिंदु बाबा ने कितने बच्चों का तन मन धन सब कुछ स्वीकार किया है, स्वीकार किया है ना। और फिर बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, बच्चे मैं तो ज्योति बिंदु हूं, मुझे ये सब कहां संभालना आएगा, इसलिए ये लो अपना तन मन धन तुम ही संभालो, लेकिन मेरा मान के संभालना, मालिक मैं ही हूं, मैं तुमको दे रहा हूं, मुझे मालिक मान के खुद ट्रस्टी बन करके इसको संभालते रहना। जैसे कोई मालिक धर्मशाला बनवा के देता है और उसमें एक को रख देता है, भाई इसमें पानी भर के रखना, ये करके रखना, कोई मेहमान आए उसको पानी पिलाना, उसको कमरा अलॉट करना, मालिक तो मैं ही हूं पर धर्मशाला को संभालो तुम। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को भी ट्रस्टी बना दिया। तो जब से हम ट्रस्टी बने तब से क्या हो गया, हल्कापन आ गया, चिंताएं खत्म हो गई, घाटा नफा सब शिव बाबा का हो गया, भूत भविष्य सारी की सारी चिंताएं जैसे बाबा ने ले ली। और जब ट्रस्टी बने तो मेरापन निकल गया, मेरापन निकल गया, मोह निकल गया, तो बोझ खत्म हो गया, बीमारियां खत्म हो गई, तेरा मेरा खत्म हो गया, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया, परिवार में भी जो एक के प्रति दूसरी भावना, दूसरे के प्रति दूसरी भावना, वो भी खत्म हो गई, सबके लिए आत्म दृष्टि आ गई, तो हम जैसे घर परिवार में रहते हुए सच्चे सन्यासी बन गए। ऐसी दृष्टि तो सन्यासियों की होती है, और बाबा ने हम बच्चों की घर में रहते ऐसी दृष्टि बना दी। कितना कमाल किया बाबा ने, घर भी नहीं छोड़ना पड़ा और चिंताएं छूट गई, सब कुछ करते हुए भी बोझ छूट गई। तो इतना बड़ा कमाल बाबा ने इस निमित्त भाव के आधार पर किया। जब हम निमित्त बन जाते हैं तो अपने घर परिवार की छोटी छोटी बातें भी बाबा से पूछ के करते हैं, फिर बाबा जिम्मेवार हो जाता है, जिससे पूछेंगे वो जिम्मेवार तो होगा ना। जैसे लौकिक दुनिया में लोग लौकिक गुरु से पूछते हैं, तो हमारा सतगुरु शिव बाबा है, हम शिव बाबा से पूछते हैं, और पूछने से पहले ही बाबा मुरली में सारी श्रीमत दे देता है। एक बार, बहुत पुराने समय की बात है, बाबा के जमाने की बात है, एक परिवार ज्ञान में चलता था, अब भी है वो परिवार। तो एक उस परिवार की कन्या स्कूल में पढ़ती थी, तो उसने अपने पिताजी को कहा कि मुझे 10 रुपए दे दो, मेरी सहेली की शादी है, मुझे कोई गिफ्ट देना है। तो पिताजी तो आश्रम में जाते थे, श्रीमत के बड़े पक्के थे, बाबा के बड़े अनन्य बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कल दे दूंगा। तो बच्ची को ख्याल आया कि 10 रुपए के लिए भी कल दे दूंगा, ऐसा क्यों बोला, पॉकेट में पैसे तो बहुत है। तो अगले दिन वो क्लास में गए और जो निमित्त दादी थी उसको पूछा कि मेरी बच्ची ने ऐसे 10 रुपए मांगे हैं, मैं दूं या ना दूं। तो उन्होंने कहा दे दो, बच्ची का दिल रह जाएगा, क्योंकि श्रीमत है ना, पैसा कहाँ लगाना है, पूछ के लगाना है। तो उन्होंने क्लास से लौट के और वो पैसा उस बाल बच्ची को दे दिया। तो उसको आया ख्याल कि पैसा तो आपके पास कल भी था, आप कल ही दे देते, आपने एक दिन क्यों लगाया। तो पिताजी ने कहा देखो, मोहवश अपने बच्चों को हमने जन्म जन्म दिया, मांगते ही दिया, जितना मांगा उससे भी ज्यादा दिया, और कभी हिसाब भी नहीं पूछा, लेकिन उस मोहवश दिए गए पैसे का कोई पुण्य नहीं बना। वो तो हम जन्म जन्म देते आए, पूरी की पूरी जागीर भी हमने बच्चों को दी, लेकिन बदले में क्या मिला, आत्मा की शक्ति कम होती गई, हिसाब किताब बढ़ते गए। लेकिन ये ऐसा जन्म है जब हमें 63 जन्मों के हिसाब चुकतू भी करने हैं और आगे के लिए कमाई भी करनी है, तो हमारे एक एक पैसे से भी कमाई है, एक एक श्वास में भी कमाई है, एक एक संकल्प में भी कमाई है। अगर हमारा एक 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 श्वास, संकल्प और एक एक पैसा श्रीमत प्रमाण लगता है तो वो जमा के खाते में जाता है। तो पिताजी ने कहा कि मैं पूछ के आया हूँ दादी से, और दादी ने मुझे छुट्टी दी है, और उस आधार से मैं ये आपको दे रहा हूँ। तो अब आपको देना ऐसे ही है जैसे सेवा में लगाना, क्योंकि श्रीमत प्रमाण है। तो ये हो गया धन के प्रति ट्रस्टी भाव। धन मेरा नहीं है, बाबा का है, कमाते हैं हम है। लेकिन निमित्त बन करके कमाते हैं और उसका उपभोग भी निमित्त बन करके करते हैं। इसलिए देखने में आता है कि थोड़े धन में भी बहुत अच्छी बरकत होती है, और अगर बहुत भी हो तो उसका दुरुपयोग नहीं होता है। बहुत धन है वो भी फिर अच्छे कार्यों में लगना शुरू हो जाता है। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को तन का ट्रस्टी, मन का, धन का, जन का, सब चीजों का ट्रस्टी बनाया। ये शरीर भी किराए का है, इसके भी हम ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। तो एक ट्रस्टी का क्या फर्ज होता है, वो अपनी ट्रस्ट को अच्छे से संभाले और उससे अटैचमेंट ना रखे। तो इस शरीर की सेवा तो करनी है, इसकी संभाल भी करनी है, इसको अनुकूल खिलाना पिलाना और आराम भी करवाना है, लेकिन इससे अटैचमेंट नहीं रखनी है, इससे सेवा भी बहुत करवानी है, क्योंकि इसी के द्वारा हमें खाते चुकतू करने हैं और जमा के खाते बनाने भी हैं। केवल यही शरीर है, चाहे जैसा भी है, बूढ़ा है, बीमार है, छोटा है, कैसा भी है, लेकिन वाह वाह तो इसी शरीर की ही है। 84 जन्मों में जितने भी शरीर मिले उनमें सबसे ज्यादा कीमती यही है, इसलिए इसकी बहुत संभाल करनी है। जैसे रेस के घोड़े की लोग क्यों संभाल करते हैं, कहते हैं भाई कमाई करता है, एक बार रेस में दौड़ेगा तो हमने इसकी जितनी सेवा की होगी सारी वापस लौट आएगी। तो ये भी एक प्रकार से कमाई वाला घोड़ा है, एक प्रकार से पुरुषार्थ की रेस वाला घोड़ा है। तो इसको सेवा करेंगे, पुरुषार्थ में दौड़ाएंगे, तो जो हम अभी करेंगे उसका सारा रिटर्न हमको मिल जाएगा। इसी तरह से मन के भी ट्रस्टी हैं। ये मन भगवान की अमानत है, इसको हम अपनी मर्जी से जहां तहां नहीं लगा सकते, उन्हीं जगह उन्हीं बातों में लगा सकते हैं जिनके लिए बाबा की आज्ञा है। जैसे बाबा बहुत साधारण सी बात मुरली में कहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन इन सब का आधार है बुरा मत सोचो। तो अगर हम अपने मन के ट्रस्टी हैं तो इसकी संभाल करेंगे, इसको वहीं लगाएंगे, मन मनाभव में लगा करके रखेंगे, ज्ञान के मनन में लगा करके रखेंगे। इसी प्रकार से हमारे जो मित्र संबंधी हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, उनके प्रति भी हमारा ट्रस्टी वाला भाव ही है। जैसे कोई पिता समझे कि मैं बच्चों का मालिक हूँ, जैसे मैं कहूँ वैसे मेरे बच्चे चलें, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही ये उठें बैठें, तो वो तो एक प्रकार से मालिकपन का भाव हो गया। लेकिन बाबा ने कहा है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी पालना के लिए भी हम ट्रस्टी हैं, बड़ा भाई हो, माता पिता हो, कोई भी हो। और जो बच्चे हैं वो भी बाबा ने कहा हैं तो आपके भाई, निमित्त मात्र, शरीर छोटा है, इसलिए उनके साथ भी ऐसे ही व्यवहार जैसे वो भाई हैं, बराबर के हैं। साकार बाबा के लिए लोग अनुभव सुनाते हैं कि छोटे बच्चों से भी बाबा ऐसी बातें करते थे जैसे ये बहुत समझदार है, बहुत बड़ा है, क्योंकि बाबा उसकी आत्मा को देख के बात करते थे। और बाबा को ये रहता था कि आत्मा तो 84 जन्म वाली है ना, 84 जन्म की अनुभवी आत्मा है, शरीर भले छोटा है। तो तन मन धन और जन, हम चारों बातों के ही ट्रस्टी हैं। रामायण में भी इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जब यादगार है, हमारे ही कर्मों की यादगार है रामायण, तो दिखाते हैं कि जब श्री राम वन में गए और भरत उनको वापस लिवा लाने के लिए गया, तो श्री राम जी ने मना किया कि मुझे तो पिताजी को दिए वचन का पालन करना है। तो भरत ने बहुत अनुनय विनय करके उनकी पादुका ले ली और पादुका को लेकर के वो अयोध्या लौटे और राजगद्दी के ऊपर पादुका रख दी और खुद सरयू नदी के किनारे भगवा कपड़े पहन करके राम नाम की माला जपने लगे। जमीन पे ही सोएं, कंदमूल फल खाएं, लेकिन उन्होंने पादुका रखी गद्दी पर, अयोध्या की संभाल की, अयोध्या की प्रजा को संभाला जैसा कि कहानी में दिखाती हैं, और किसी प्रजाजन को कोई कष्ट ना हो इस बात का भी पूरा ध्यान रखा। किसी प्रजाजन को ये ख्याल ना आए कि राम नहीं है तो अयोध्या असुरक्षित हो गई, इसका भी ध्यान रखा, लेकिन अपने आप को राजा नहीं, राम का सेवक माना। राजा वाले कर्तव्य सारे किए, राजा वाली ड्यूटी पूरी बजाई, लेकिन अपने आप को राजा नहीं माना, गद्दी स्वीकार नहीं की, निमित्त बन करके सेवा की। तो परिणाम क्या निकला, 14 वर्ष तक दिखाते हैं उस राज्य में पूर्ण सुख शांति रही। अब कई बार जैसे आजकल की दुनिया में हम देखते हैं लोग क्या चाहते हैं, कहते हैं गद्दी तो हमें मिल जाए, हम काम करें या ना करें लेकिन एक बार गद्दी हमें जरूर मिलनी चाहिए। और उधर कैसी भावना दिखाते हैं कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए लेकिन मुझे काम पूरा करना है। तो जब ये भावना होती है कि मुझे मान मिले या ना मिले, सीट मिले या ना मिले, आगे रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन मेरे को करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये भगवान का कार्य है। अब देखा जाए तो हमारी भी यही स्थिति है। बाबा कहते हैं बच्चे करण करावन हार मैं हूं और तुम बच्चे केवल निमित्त हो। तो जब हमको करण करावन हार की स्मृति रहती है, बाबा करने वाला भी है और करवाने वाला भी है। कई बार बाबा स्वयं करते हैं और कई बार बाबा किसी से करवा लेते हैं। कई बार बाबा किसी बच्चे की हेल्प के लिए किसी दूसरे को निमित्त बना देते हैं और उस समय लगता है कि ये कार्य होने वाला नहीं था लेकिन ये अचानक हो गया, कमाल हो गई। तो उस कमाल में बाबा करण करावन हार की कमाल होती है। तो जब हमको ये स्मृति रहती है कि करण करावन हार बाबा है, करण करावन हार आपे ही, आप भक्ति में भी कहते हैं मानुष के नाही कुछो हाथ। तो जब ये स्मृति रहती है तो ड्रामा भी याद रहता है, एकरस स्थिति भी रहती है, निर्विघ्न स्थिति भी रहती है। जैसे हमारी मीठी मम्मा का स्लोगन था, हुक्मे हुक्म चलाए रहा। और जैसे बाबा को भी देखिए, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा भी ड्रामा के बंधन में है। कौन पावरफुल, ड्रामा या बाबा? अब सर्वशक्तिवान बाबा है लेकिन, और ड्रामा बाबा की रचना है, ड्रामा की स्क्रिप्ट बनाने वाला कौन, क्रिएटर कौन इस सृष्टि ड्रामा का? क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर बाबा है। लेकिन बाबा अपने ही बनाए गए नियमों में बंधे हुए हैं। शक्तिशाली वो नहीं होता जो नियम बनाए और तोड़ दे, शक्तिशाली वो होता है जो नियम बनाए और अपने बनाए गए नियम में अपने आप को बांध ले। महात्मा गांधी के जीवन की एक बात सुनाते हैं कि एक बार उन्होंने एक नियम बनाया था कि अगर कोई 2:30 बजे के बाद भोजन करने के लिए आएगा, इतनी देरी कर देगा तो उसको एक पर्टिकुलर जगह खड़े होकर के सजा भोगनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत बड़ा घर होता है जैसे, तो वहाँ ये नियम बनाना पड़ता है कि भोजन इतने बजे तक खत्म हो जाना चाहिए ताकि लोग जल्दी जल्दी आए और काम निपटे। तो एक बार कोई अंग्रेज बापू से मिलने आया और वो उनसे जरूरी बातें करने लगे और 2:30 बज गए। और उसके बाद जब वो भोजन करने आए तो उन्होंने खुद ने भी वहाँ खड़े होकर के सजा भोगी, जैसी सजा उन्होंने बाकी लोगों के लिए बनाई हुई थी। तो उनको बहुत समझाया गया कि ये आप पर नियम लागू नहीं होता, आप तो एक जरूरी कार्य के कारण व्यस्त थे इसलिए नहीं आ सके, आप उन मेहमानों को छोड़ के बीच में कैसे उठते, इसलिए आप ये सजा मत लीजिए। लेकिन बापू ने कहा अगर मैं ही नियम बनाऊं और मैं ही उनको तोड़ दूं तो बाकियों को क्या प्रेरणा मिलेगी, इसलिए मेरे बनाए नियम में मुझे बनने दीजिए, मुझे भी उतनी सजा भोगने दीजिए। तो एक देहधारी मनुष्य भी अगर वो सच्चा है और वो लोगों के लिए आदर्श है तो वो भी अपने नियमों का पालन करता है। सर्वशक्तिवान हम सबका अति प्यारा मीठा बाबा भी, सर्वशक्तिवान होते हुए भी जो बाबा ने अपने नियम बनाए हैं उन नियमों से बाबा रिंच भी इधर उधर नहीं होते। इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा अधिक पावरफुल या बाप अधिक पावरफुल। तो वास्तव में तो बाबा ही पावरफुल हैं क्योंकि ड्रामा के रचयिता भी तो बाबा ही हैं। तो वो बाबा करण करावन हार बन करके हम सब बच्चों से करवाते हैं। तो जब हमको ये स्मृति रहती है कि बाबा सर्वशक्तिवान बाबा, करण करावनहार बाबा हम सबके सिर पर है, हमारी छत्र छाया है, हम उसकी आज्ञा प्रमाण श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं। तो सब कुछ करते हुए भी निर्माण निमित्त रहते हैं, और जो निमित्त भाव में रहता है उसमें निर्माणता तो अपने आप आ जाती है। निर्माणता माना नम्रता, अहंकार नहीं। तो जब करण करावन हार बाबा है तो हमें किस बात का अहंकार, सिखाया भी उसने, करवा भी वही रहा है, मालिक भी वही है, मार्गदर्शन भी उसी का है, जिम्मेवार भी वही है, तो फिर हमें किस बात का मैपन, हमें किस बात का अहंकार। सब कुछ उसी का तो है, ज्ञान भी उसी का है, और जो भी कुछ है वो सब कुछ बनाने वाला या उन सबको क्रिएट करने वाला भी वही है। जब ये बात स्मृति में आती है तो निमित्त भाव और निर्माणता दोनों जीवन में आती हैं, और यही वास्तव में विश्व के नव निर्माण के आधार हैं। हमारी दादी जी को हम सब ने देखा, इतना बड़ा कारोबार दादी जी ने संभाला, लेकिन दादी जी एक बच्चे की तरह से मुस्कुराती थी, फूल की तरह से खिली रहती थी, फरिश्ते की तरह से उड़ती रहती थी, और सब के प्रति दादी जी का इतना स्नेह और अपनापन था। तो दादी जी को ये स्लोगन बहुत ही पक्का था, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। और जब जब दादी जी को देखते हैं तो हमको भी ये गुण और उनकी ये धारणा स्मृति में आती है। हमें भी सफलता प्राप्त करनी है तो हमें इस स्लोगन को कूट कूट के अपने अंदर पक्का करना है। ओम शांति।